जोहार साथियों, आप सुन रहे हैं मोबाइल वाणी और मैं हूं JM रंगीला। मोबाइल वाणी में एक कार्यक्रम चल रहा है, एक अभियान चल रहा है जिसका नाम है पक्ष विपक्ष, और पक्ष विपक्ष की 48वीं कड़ी का विषय है MSP से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हम बोकारो जिले के नावाडीह प्रखंड के ऊपर घाट स्थित गुनियाटो पंचायत में पहुंचे हैं, जहां किसान नेता गणेश प्रसाद महतो से इस संबंध में एक बातचीत करते हैं। तो गणेश जी, ये MSP से आप क्या समझते हैं, थोड़ा हमारे श्रोताओं को भी समझाएं।
धन्यवाद रंगीला जी। अभी आप जैसा कि जानते हैं, आपने पूछा है कि MSP, इसका फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और हिंदी में इसको न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य का आशय यह है, इसका अर्थ यह है कि सरकार किसानों से उसके लागत मूल्य से 1.5 गुना अधिक दाम पर खरीदती है। जैसे अभी देख रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो किसानों जो कोष पड़ता है, लागत लगता है, उस लागत से उसे 150 बोनस के रूप में दे करके खरीदती है, उसी को बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार खरीदती है, उसी दर से मार्केट में उसको अवेलेबल कराती है। इससे किसानों का क्या फायदा होता है? आजकल किसान लोग को खेती करना मैंने बहुत बड़ा सवाल आ गया है, खेती लाभकारी नहीं रह गया है, घाटे का सौदा हो गया है, लोग खेती करना नहीं चाहते हैं, खेती के अलावे दूसरे काम में वैकल्पिक व्यवस्था में जाना चाहते हैं। सरकार और हमारी मनसा यह होनी चाहिए कि किसानों को जो उत्पादन जो लागत लगता है, जिसके जो वही किसान है जो पूरा देश को पालता है, पूरा दुनिया को पालता है, चाहे किसी पद पर काम कर रहे हों उसको पालता है, इसलिए उसको जिंदा रखने के लिए, खेती कृषि को जिंदा रखने के लिए, कृषि को आगे बढ़ाने के लिए, कृषि को उद्योग का दर्जा देने के लिए, उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य को बहाल करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रक्रिया रखा गया है, नियम में रखा गया है।
तो किसानों के लिए एक स्वामीनाथन आयोग बनी थी, जिसकी रिपोर्ट भी सरकार के पास मौजूद है। उस रिपोर्ट से कहा गया कि उसी के बदौलत जो है स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया। तो आखिर उस रिपोर्ट में क्या है, थोड़ा ये हमारे किसानों को भी बतावें, ताकि उनकी जानकारी बढ़े, तब वो अपनी जमीन के लिए लड़ सकें, खेती के लिए लड़ सकें,
लाभकारी बना सकें। धन्यवाद। डॉक्टर स्वामीनाथन कमेटी का जो सिफारिश जो आया, उसकी सिफारिश में यह कहा गया है कि किसी भी हालत में किसान को आत्महत्या करना ना पड़े, किसी भी हालत में किसानों को कर्ज से पूरा मैंने लदा हुआ नहीं रहना चाहिए। उसके राहत के लिए और कृषि को आगे बढ़ाने के लिए, तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में आगे आने के लिए, जैसे दूसरे राज्यों में पंजाब हरियाणा के राज्यों में हरित क्रांति का नारा दिया, उसको सफल किया, पूरे देश में सचाते थे किसान इतना आत्मनिर्भर बने कि किसान खेती करना ना छोड़े, किसान पलायन करना ना छोड़े, पलायन करने के लिए ना जाए, और खेती को लाभकारी बनाया जाए। अभी जैसे देखिए, सरकार की नीतियां ऐसी रही है कि जान लीजिए 2000 में 580 रुपया प्रति क्विंटल आपका गेहूं का रेट था, और 6 साल बाद उसको 680 रुपया किया गया, 670 रुपया किया गया। सोचिए 6 साल में उसका बढ़ोतरी कितना हुआ, 70-80 रुपया के लगभग होता है। और आज की तारीख में जो 24-25 में 2150 रुपया रखा गया, और उस पर जो है बोनस अगर दे दिया 150 रुपया सरकार देती है, तो 2200 कुछ रुपया होता है मिला करके। तो सोच लीजिए, जब सप्तम आयोग के जो कमीशन का जो सिफारिश है, उसमें मजदूरों को 18,000 रुपया जो खाली चाय पिलाएगा, पानी पिलाएगा, वैसा मिलता है, और जो किसान 24 घंटा काम करता है उसको 20-22 साल में मुश्किल से 8 से 10 गुना उसको वृद्धि होता है। इसलिए हम समझते हैं कृषि के क्षेत्र में सरकार का रवैया उदासीन है, किसानों के लिए नहीं सोचती है, किसानों के विपरीत काम कर रही है। इसलिए कमीशन, स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट यह बोलता है, अगर किसानों को आगे बढ़ाना है, कृषि को उन्नत करना है, कृषि उद्योग का दर्जा देना है, तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देना पड़ेगा, उसको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, आधुनिक तकनीकी से लैस होकर काम करने के लिए करना पड़ेगा, ताकि किसान आगे बढ़े, कृषि का लाभ हो। और हमारे राष्ट्रीय बजट में खेती का, कृषि का जो योगदान है सबसे ऊंचा है, और यही खेती है जो रोजगार को देने के लिए सक्षम होती है और करेगी। इसीलिए स्वामीनाथन कमेटी का अनुशंसा लागू होना चाहिए देश के अंदर में।
हाँ, तो मित्रों, आपने गणेश जी के विचारों को सुना। धन्यवाद। JM रंगीला, बोकारो मोबाइल वाणी, बोकारो।